नक्श की हरकतों की वजह से इशिका काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसने पहले नक्श को थप्पड़ लगाया, फिर बाहर आकर उसने अभिमन्यु को राजवंश छोड़ने के बारे में कहा। अंदर जो भी हुआ, अभिमन्यु अभी इस बारे में सब कुछ नहीं जानता था, इसीलिए वो उसे लेकर अंदर जा रहा था। अंदर जाते हुए अभिमन्यु की नज़र नक्श पर पड़ी। उसके गाल पर इशिका की उंगलियों के निशान थे, तो अभिमन्यु को समझने में देर नहीं लगी। अभिमन्यु ने गुस्से में नक्श के नाक पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके नाक से खून बहने लगा। नक्श के कदम लड़खड़ा गए थे। वो अभिमन्यु की तरफ घूरते हुए देखने लगा। उसने अपने नाक पर हाथ लगाया और चिल्लाकर कहा, चाचू, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इस वजह से मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मुझसे इतने भी बड़े नहीं हो कि आप मुझ पर हाथ उठाएं। तुम मुझसे बड़े होते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की? अभिमन्यु ने सर्द आवाज में कहा। नक्श अभिमन्यु को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, इशिका मेरी। उसके बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु ने उसके पंच को एक हाथ से रोका और दूसरे हाथ से उसके पेट में एक और मुक्का मारा। नक्श दर्द से जोर से कराहा। उसकी आवाज़ सुनकर वसुधा जल्दी से निवेदिता के साथ बाहर आई। उन्होंने पहले नक्श को अभिमन्यु पर हाथ उठाते देखा, फिर बाद में अभिमन्यु को उसे रोकते हुए और मारते हुए देखा। वसुधा ने तेज आवाज में कहा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरे घर को तुम लोगों ने अखाड़ा बना रखा है। उनकी आवाज के साथ ही नक्श और अभिमन्यु रुक गए थे। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू करके कहा, दादी, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नक्श इशिका के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, उसे अपने पास से बाहर निकलने की जरूरत है। वो अब मेरी वाइफ है, फिर क्यों ये उसके पीछे पड़ा है? क्योंकि वो आपसे पहले मेरी लाइफ में थी, हम दोनों के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, नक्श ने जवाब में कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी लाइफ में थी या नहीं, लेकिन कुछ ही महीनों में हमारी शादी को 3 साल हो जाएंगे, फिर मेरे लिए तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप कोई मैटर नहीं करती है। तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने बार बार इशिका को परेशान करने की कोशिश की है। आज जब वो खुश है तब तुम्हें अपनी फ्रेंडशिप याद आ रही है? क्या तुम उन सभी मोमेंट्स को भूल गए जब तुमने आयशा के साथ मिलकर सबके सामने इशिका को नीचा दिखाने की कोशिश की थी? अभिमन्यु गुस्से में फटते हुए बोला। उसकी बात सुनकर नक्श की नजरें नीची हो गई थीं। उसने बहुत बार आयशा का साथ दिया था ताकि इशिका किसी के मुंह दिखाने लायक ना रहे और कोई उससे शादी ना करे। ऐसे में इशिका को उसके पास लौटना पड़ता। तुम्हें खुद अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक बार दिमाग लगाकर सोचो कि क्या तुम सच में इशिका को डिजर्व भी करते हो? एक असली मर्द वो होता है जो अपनी औरत को सबके सामने सम्मान दिलाए, ना कि कायरों की तरह उसे 4 लोगों के सामने नीचा दिखने पर मजबूर करे। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, अभिमन्यु ने उसे वार्निंग देते हुए कहा और फिर इशिका का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गया। अभिमन्यु बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने तुरंत पृथ्वी को कॉल किया और कहा, पृथ्वी, एक काम करो, पिछले 1 साल की नक्श की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुझे मेल करो। बहुत से लोग राजवंश फैमिली का हिस्सा होने की वजह से ऑफिस में हायर पोजीशन पर हैं। मुझे उनके औकात के हिसाब से उन्हें पोजीशन देनी है। अभिमन्यु की बातों से इशिका समझ गई थी कि अब वो नक्श को उसके किए की सजा देने वाला है। इशिका उसके पास आई और उसका हाथ सहलाते हुए बोली, गुस्सा मत करो, शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। मैंने नक्श को उसकी लिमिट बता दी थी। नहीं, तुमने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया। उसके साथ जो भी हुआ वो ये डिजर्व करता है। मैं बहुत दिनों से उसकी हरकतों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसी हालत में तुम्हें बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। तुम थोड़े दिनों के लिए मिस्टर सिंघानिया के यहाँ रहने जा सकती हो। मिसेस सिंघानिया की फिक्र मत करना, मैं उनका ध्यान रखूंगा, अभिमन्यु ने इशिका के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा। लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी, इशिका बोली। कोई बात नहीं, मैं रोज शाम तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। पता है कभी मैंने शादी और इन सब रिलेशन को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हम दोनों कॉलेज टाइम में मिलते और एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते। मैं चुपके से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आता, अभिमन्यु ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। वो इशिका का मूड सही करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? वैसे आइडिया अच्छा है। डैड चाहते थे कि तुम भी मेरे साथ रहने के लिए आओ, वो तुमसे नाराज हैं, तो ऐसे में तुम मुझसे छुपकर मिलने आओगे तो ही सही रहेगा, इशिका ने हंसते हुए कहा। उसने खुशी खुशी अभिमन्यु का प्रस्ताव मंजूर कर लिया था। अभिमन्यु ने भी इस बात पर सहमति जताई। इशिका अभिमन्यु को बताए बिना पार्थ के प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहती थी। उसने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा, मुझे पार्थ का मेल आया था, वो चाहता है कि मैं उसके प्रोजेक्ट पर काम करूं, लेकिन मुझे उसके लिए लैब जाना होगा। क्या इस हालत में लैब जाना सेफ रहेगा? अभिमन्यु ने परेशान स्वर में पूछा। दिशांक साथ रहेगा तो मेरी सिक्योरिटी का ख्याल रख लेगा, वैसे भी मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, इशिका ने जवाब दिया।
अभिमन्यु ने कभी उसे किसी काम के लिए नहीं रोका था और अब भी वो उसे मना करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ भरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। वो अभिमन्यु के साथ मिलकर अपना सामान पैक कर रही थी। इस बीच इशिका ने अभिमन्यु से कहा, अच्छा अभिमन्यु, रूही कब तक आएगी? तुमने कहा था कि वो युविका के साथ घूमने के लिए गई है। मेरी उससे मैसेज में बात भी हुई थी, मुझे उसकी याद आ रही है। युविका भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, रूही भी उसके साथ काफी घुल मिल गई है। मैं चाहता हूँ कि युविका को थोड़ा टाइम रूही के साथ बिताने दे। वैसे भी इस समय मिस्टर सिंघानिया के सामने ईशानी का सचाना सही नहीं रहेगा, वो पहले ही मिसेस सिंघानिया से नाराज है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इशिका भी उसकी बात से सहमत थी। पैकिंग हो जाने के बाद अभिमन्यु ने इशिका को सुलाया और फिर कमरे से बाहर आ गया था। उसे इशिका के इस फैसले के बारे में मिसेस सिंघानिया और वसुधा को भी बताना था। रात के वक्त अक्सर वो दोनों साथ ही होती थी, ये सोचकर अभिमन्यु उनके पास पहुंचा। अभिमन्यु ने उनसे कहा, मैं इशिका को कुछ दिनों के लिए मिस्टर सिंघानिया के यहाँ भेज रहा हूँ। बहू प्रेग्नेंट है, ऐसे में मिस्टर सिंघानिया उसका ध्यान रख पाएंगे? वसुधा ने चिंता जताते हुए पूछा। हाँ, वो कर लेंगे। तब तक मुझे राजवंश फैमिली के लोगों से निपटना है। मैं शांत था तो इन लोगों ने इसे मेरी कमजोरी समझ लिया है। मैं इशिका के सामने कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि इससे उसे ही परेशानी होगी, लेकिन अब टाइम आ गया है कि उन्हें उनकी असली औकात दिखा देनी चाहिए, अभिमन्यु बोला। वो नक्श के करतूत को भुला नहीं था। वसुधा ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मैं तो कब से इस बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते राजवंश विला के मुख्य हाउस पर तुम्हारा हक है। वो उस विला और कमरे में क्या सोचकर रह रहे हैं? कोई बात नहीं दादी, कल उस घर में ही रहने के लिए जाऊंगा। मिसेस सिंघानिया, क्या आप मुझे कंपनी देंगी? क्योंकि दादी तो अपना घर छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है, अभिमन्यु ने राधिका की तरफ देखकर पूछा। राधिका ने उसकी बात पर हामी भर दी थी। अभिमन्यु उनसे बात करने के बाद वापस अपने कमरे में आ गया था। अब तक अभिमन्यु ने राजवंश फैमिली के सभी लोगों को बहुत इग्नोर किया था क्योंकि वसुधा की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन अब वसुधा भी ठीक हो चुकी थी तो अभिमन्यु ने उन्हें उनकी असली जगह दिखाने की ठान ली थी।
फिलहाल के लिए इतना ही। अभिमन्यु अब एक्शन मोड में आ गया है। कमेंट में किसी ने पूछा था कि कहानी कितनी लंबी चलेगी, तो ज्यादा पार्ट्स नहीं बचे हैं, लेकिन इसका सीजन 2 आएगा जिसकी कहानी पूरी तरह अलग होगी। चलिए अगले चैप्टर पर मिलते हैं।